We're looking at the Satipatthana Sutta.
तो हम सतिपट्ठान सूत्र को देख रहे हैं.
And we've seen that it was preached by the Buddha in Delhi.
और हमने ये देखा है कि ये जो सूत्र है वो भगवान बुद्ध ने दिल्ली में बताया था.
We've seen that it's the direct path to the end of suffering, to nirvana.
तो हमने ये भी देखा है कि ये सीधा ऐसा मार्ग है जो हमारे दुखों से हमारी मुक्ति कराता है और हमें निर्वाण दिलाता है.
You get to nirvana through developing mindfulness.
हम निर्वाण को पा सकते हैं अपने भीतर जागृति का विकास करके.
All the other aspects of the path can be seen in relation to mindfulness.
दूसरी भी बहुत सारी जो बातें हैं वो एक जागृति की ओर हमें ले जाती है.
So for instance, Shila has a place in relation to mindfulness.
जैसे हम देखते हैं कि जो शील है वो जागृति की जगह है.
If you're not acting skillfully, you can't really be mindful.
अगर हम नैतिकता का आचरण नहीं करेंगे तो हमें जागरूक रहना मुश्किल है.
So you can go through every aspect of spiritual life and see it related to mindfulness.
तो हम धर्म के जितने भी पहलू हैं इन सारे पहलुओं को जागृति के साथ देख सकते हैं. इसका कैसा संबंध है?
So it's these four foundations or four aspects of mindfulness, four means of attending mindfully that constitute the path.
तो यह जो चार पहलू हैं जागृति की और जाने के लिए उस मार्ग पर रहने के लिए.
And what we have to do is to observe closely these four aspects.
तो इसलिए हम इसे बहुत ही करीबी से इसको अपने अंदर समा लेने के लिए देख रहे हैं.
We have to observe closely our body.
हम इसे अपने शरीर से इसको अपने अंदर समा लेने की देखिए.
We have to observe closely our feelings.
हम अपनी वेदनाओं के साथ इसे समा लेने को देख रहे हैं.
We have to observe closely our minds.
हम अपने मन से इसे पूरा समा लेने के लिए देख रहे हैं.
And we have to observe closely the contents of our minds.
हम अपने मन के जो धर्म है उसके साथ इसे समा लेने को देख रहे हैं.
And you remember anupasati is the word that's used for observing closely.
और यह जो अनुपस्थिति यह शब्द आया है करीबी से देखना इस अर्थ से आया हुआ.
And anupasati has, as it were, four definitions.
और अनुपस्थिति की चार व्याख्याएं हैं.
It consists of four elements.
चार अलग अलग पहलू हैं इसके सातत्य के.
First of all, it consists of making a consistent effort.
सातत्य से प्रयत्न करना.
So that all the time you're trying to be aware, you're trying to be mindful.
हमेशा हर पल हमने जागरूक रहना है.
It doesn't just happen spontaneously.
ये केवल ऐसे अचानक आने वाली बात नहीं है.
If you don't make any effort, mindfulness will not develop.
अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जागृति नहीं आएगी.
It consists of being intelligent.
और यह बौद्धिकता से प्रयास करने है, सातत्य रखने, बौद्धिकता में सातत्य रखना है.
Really understanding what's happening.
और जो कुछ हो रहा है उसे सचमुच में समझ लेना है.
Really knowing what's happening.
क्या हो रहा है इसके बारे में जानना है.
Applying your intelligence to what information is coming through your senses.
हमारी जो इंद्रियां है उसे कौन सी संवेदनाएं हमें मिल रही है इसके प्रति सजग रहना है.
And it consists of sati.
और जो यह सती है इसका भी सातत्य रखना है.
That means really being aware of what's going on right now.
अभी इस वक्त क्या हो रहा है इसके प्रति सचेत रहना है.
But it means letting go of your likes and dislikes.
और ये जो हमारी पसंद और नापसंद है इसे दूर रहना, इसे दूर करना है अपने से.
You notice those likes and dislikes, but you don't become a slave of them.
हमें ये पता होता है कि ये मेरी पसंद क्या है और मेरी नापसंद क्या है, तो इसके हमें गुलाम नहीं होना है.
So that's the attitude with which one is trying to be mindful.
तो यह जागृति का यह उद्देश्य है.
So then we began to come on to the first of the four satipatthana.
तो इनमें से पहले सतिपट्ठान को कल हमने देखा है, उसकी तरफ आए थे.
And now it gets much more specific, it gets more practical.
और इसके हम और इसे करीबी से देखेंगे और ज्यादा जो व्यवहारी है इसे देखेंगे.
So we saw that mindfulness of the body is the basis for growing mindfulness in other areas.
हम ये देख रहे हैं कि यानी शरीर के प्रति जागरूक होना यह नींव है, यह मूल है अन्य सती पठानों की ओर जाने के लिए.
If you're not really aware of your body, it's very difficult to be aware of your mind.
अगर हम अपने शरीर के प्रति ही जागरूक नहीं है तो बड़ा मुश्किल है अपने मन के प्रति जागरूक होना.
Because the mind is so active, so complex, so subtle.
हमारा मन जो है बहुत ही गतिशील है, बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही उलझा हुआ है.
It's a bit like a wind.
और एक तरह से यानी हवा की तरह है.
When the wind is blowing, you can't see the wind.
जब हवा बहती है तो हम उसे देख नहीं सकते कि ये बह रही है.
But you can see the tree shaking with the wind.
लेकिन हम देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो इससे हिल रहा है.
So if you want to know which way the wind is blowing, you have to look at the tree.
अगर हमें ये देखना है कि हवा का रुख कहाँ है तो हम पेड़ की तरफ देख सकते हैं.
So if you want to see the mind, you have to first see the body.
अगर हमारा मन कहाँ जा रहा है ये अगर हमें देखना है तो पहले हमें अपने शरीर की ओर देखना चाहिए.
Feelings take place in the body.
जो भावनाएं और वेदनाएं होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है.
The mind expresses itself through the body.
जो हमारा मन है शरीर के द्वारा इसे दिखाता है.
And the mental states they drive the body.
यह जो हमारी मानसिकता है ये हमारे शरीर को चलाता है.
So we need to start by really very clearly being aware of our bodies.
तो हमें अपने शरीर को जानते हुए इसे रोकना है.
The Buddha said two very interesting things about awareness of the body.
बुद्ध ने बहुत ही रोचक बातें अपने शरीर को रोकने के लिए कही है.
He said, "Kayanupassana is your best friend."
वो कहते हैं कि कायानुपस्थना जो है ये आपकी अच्छी दोस्त है.
That's very interesting, isn't it?
ये बहुत ही रोचक बात है.
Right here, we have our best friend.
अभी ये जो सर्वोत्तम मित्र है हमारे साथ है.
Because our best friend enables us to get calm, to be still.
हमारा जो सही मित्र होता है वो शांत होता है, स्थिर होता है.
Our best friend enables us to change our minds.
सही मित्र वो होता है जो हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए सहायता करता है.
So that's the first thing the Buddha said. It's our best friend.
बुद्ध ने ये पहली बात कही कि ये हमारा अच्छा मित्र है.
The second thing he said is perhaps closely related.
दूसरी बात उन्होंने कही है जो इससे थोड़ी सी करीब है.
He said that mindfulness of the body is a source of joy.
बुद्ध कहते हैं कि यानी ये शरीर के प्रति जागृति करना है मतलब एक तरह से आनंद लेना है, आनंद का स्रोत है.
And I think that's certainly my experience, and I'm sure others too.
ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का भी रहेगा ये.
When you're really strongly aware of your body, there's quite a bit of pleasure, quite a bit of joy arises in you.
जब हम अपने शरीर के प्रति बहुत ही मजबूती से सजग हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो एक तरह से सुख और आनंद हमारे अंदर उत्पन्न होता है.
Because your mind is at last still.
आखिरी में हमारा मन वहाँ स्थिर होता है.
And you get a sort of a quiet joy from the actions of your body.
तो एक तरह से हमारे शरीर से इस तरह के आनंद को अनुभव होते हैं.
You might notice that in the walking.
आपने शायद इस बात को देखा होगा कि जब हम चक्रमण करते हैं.
We've got more work to do on the walking, but you might find sometimes when you're walking that you just feel a sort of quiet joy.
यानी ये जो चक्रमण का जो सराव करते हैं इसके बारे में और भी कुछ कार्य करने की हमें जरूरत है, लेकिन फिर भी हम एक तरह के आनंद को अनुभव करते हैं, उसकी निर्मित होती है.
You feel very contented.
हमें एक तरह से संतुष्ट लगता है.
Nothing to do, just walk.
कुछ करना नहीं है, सिर्फ चलना है.
Sometimes you can get that sitting.
कभी कभी हम बैठे हुए भी अनुभव कर सकते हैं.
You're aware of your body, you're just sitting.
हम अपने शरीर के प्रति सजग होते हैं और सिर्फ बैठे हुए रहते हैं.
So, mindfulness of the body is one's best friend and a source of joy.
तो शरीर के प्रति जागरूक होना ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है और साथ ही में ये हमारे आनंद का स्रोत है.
And it's the basis for further development of the Satipatthana.
और सतिपट्ठान के जो अन्य पहलू हैं इसकी यह नींव है.
So we saw yesterday that there are six exercises, you might say, concerned with Kayanupassana.
तो कायानुपस्थना के संबंध में हमने देखा है कि यहाँ छह अलग अलग प्रकार की पद्धतियां बताई हैं.
First of all, there's watching the breath.
पहली बात है कि यानी अपनी सांसों को देखना.
Then there's knowing the postures of your body.
बाद में हमारे शरीर की जो बैठक है शरीर यानी जो आसन है हमारा उसके तरफ देखना
एंड देन थर्डली देयर्स बीइंग फुली अवेयर ऑफ योर मूवमेंट्स ऑफ योर एक्शंस
हमारी जो मूवमेंट हलचल है हमारी हमारी हलचलों के प्रति सजग रहना
फोर्थली देयर्स recognizing that the body is made up of parts fourthly this recognizing that the body is made up of parts
to yani hamara jo sharir hai
nahi dhatu pure no it's not chain not dhatu so it you know like there's blood there's bones there's yeah
to hamara jo sharir hai ye alag alag jo बातें ऐसे जैसे खून हड्डियां और इसी से बना हुआ है
And then fifthly, there's seeing that the body is made up of the elements.
और पांचवी बात यह है कि हमारा जो शरीर है वह धातु से बना हुआ है
And then sixthly, there's the corpse contemplations.
और छठी बात जो है कि जो विघटन की प्रक्रिया है उसके प्रति चिंतन करना
So these six represent a sort of progression.
तो यह जो छह बातें हैं एक तरह से हमारी यानी क्रमशः विकसित होने वाली बात है.
And I've just been doing some research on this Satipatthana Sutta, and I discovered something very, very interesting.
तो मैं जब यानी सतिपट्ठान का अभ्यास कर रहा था इसके बारे में कुछ चिंतन कर रहा था मैंने मुझे कुछ बातें उसमें मिली है नई बातें.
When I've looked at the text, it always seems strange to me that Mindfulness of breathing is the first in the sequence.
तो जो कुछ भी यानी आगे हम देखते हैं तो एक रोचक बात है कि हमारा सबसे पहले हमारी सांस से ही शुरुआत होती है.
But apparently in the Chinese and Tibetan versions, mindfulness of breathing is third in the sequence.
और Chinese और Tibetan जो पद्धति है उसमें सांस तीसरी जगह पर आई हुई है.
And in other places in the Pali Canon. It's third in the sequence.
और दूसरे भी जो पाली ग्रंथों का है वहाँ पर भी यह तीसरी जगह पर आई है.
And that makes much more sense.
और इसमें बहुत कुछ अर्थ है.
The others are, so to speak, preliminary to sitting meditation.
तो बाकी यानी प्राथमिकता बाकी लोगों ने यह कहा है कि ध्यान के लिए बैठना प्रथम बात है.
Of course, we don't really know what the Buddha intended.
और हमें सचमुच ये पता नहीं है कि बुद्ध ने क्या इस बात पर जोर दिया था
But that's the way I'm going to use the text, to interpret the text.
तो इस सूत्र के साथ मैं इस तरह से देख रहा हूँ
So it's very interesting, isn't it? The Pali version preserves a different order to the Chinese versions which come from Sanskrit.
तो यानी ये बड़ी रोचक बात है कि पाली जो ग्रंथ है वो जो संस्कृत में अनुवादित हुए चाइना में इससे कुछ अलग बातें कहती है
So we must realize from this that the Pali Canon, although it's very, very full and rich, is not necessarily absolutely accurate.
तो जो पाली ग्रंथ है वो बहुत ही समृद्ध है लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सही है
Theravadins will not accept this.
थेरवादी लोग जो है उसे स्वीकृत नहीं करते
They think it's a tape recording of the Buddha speaking.
वो कह रहे हैं ये जैसे कहने बुद्ध की जो वाणी है टेप रिकॉर्ड टेप की गई है
But it obviously isn't.
और ये ऐसा नहीं है
So we'll at least we'll follow the Chinese sequence of this these reflections.
तो यह जो चाइनीज जो क्रम पद्धति है उसे हम देख रहे हैं
So yesterday I did get halfway through the first one. But because of this little bit of research, I'm going to revise.
तो कल मैंने इसमें से कुछ आधा भाग देखा था और फिर चिंतन करके अभी हम फिर से देख रहे हैं इसे.
So let's start with the second of the reflections under Kayanusmriti.
तो हम यह दूसरा जो चिंतन है कायानुसति के बारे में उसकी तरफ देखेंगे.
So it says that when the monk is walking, he knows he's walking.
जब भिक्षु चलता है तो वह जानता है कि वह चल रहा है
When he's standing, he knows he's standing.
जब वो खड़ा रहता है तो वो जानता है कि वह खड़ा है
When he's sitting, he knows he's sitting.
जब वो बैठता है तो वो जानता है कि वो बैठा है
When he's lying down, he knows he's lying down.
जब वो सोया है तो वह जानता है कि वह सो रहा है.
Well, these are the four basic postures.
तो यह मूल चार हमारी अवस्थाएं
हैं. Traditionally, you've got to be in one of those four. Traditionally, you have to be in one of those four.
यानी हम परंपरागत देखेंगे तो यानी इनमें से किसी एक स्थिति में हम बुद्ध को देखते हैं.
Whatever you're doing will fit into one of these categories.
यानी इनमें से किसी एक पद्धति में हम किसी को देखते हैं.
But there's a Buddhist joke about this.
तो इस यानी बौद्धों का यह एक विरोध है.
You remember that before the first council, the bhikshus didn't know what to do.
तो जो पहली संगति हुई थी तो भिक्षु ये नहीं जानते थे कि अब क्या करना है.
They wanted to have a meeting of all the arahats.
वो चाहते थे कि सभी अरहंतों की यह सभा हो.
And they wanted in that meeting to recite all that everybody remembered of what the Buddha had said.
तो वो चाहते थे कि वो यानी वो सारी चीजों को यानी दोहराया जाए जो यानी बुद्ध ने कहा है.
The person who knew far, far more than anybody else was Ananda.
और सभी यानी वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से सभी से जानने वाले आनंद थे.
But Ananda wasn't an arahat.
लेकिन आनंद जो थे वो अरहंत नहीं थे.
So this created a difficulty for them.
तो यह बड़ी यानी मुश्किल पैदा हो गई वहाँ पर.
So some bhikshus went to Ananda and said, "Well, we need you in this meeting."
तो कुछ भिक्षु आनंद की तरफ गए और उन्होंने कहा कि यानी इस सभा में आपकी हमें जरूरत है.
प्लीज गेन अरहत tonight.
तो कृपया आज रात अरहत हो जाइए.
So that night, Ananda was just getting into bed.
तो उस रात आनंद
into bed, not to bed, to bed, getting into his bed.
हाँ, तो उस रात आनंद अपने बिस्तर पर गए.
And he'd stopped standing up, but he hadn't started lying down.
यानी वो खड़े भी नहीं थे और अभी पूरी तरह सोए भी नहीं थे.
And at that point, he realized he was free.
और उस क्षण उन्होंने देखा कि वो मुक्त हो गए हैं.
So he was in none of the four postures.
तो उनमें ये चार में से किसी एक पोस्चर में वो नहीं थे.
Anyway, there's a Buddhist joke.
ये बौद्धों का विरोध है.
And he was able to go to the meeting the next day.
और दूसरे दिन वो मीटिंग में जाने के लिए सक्षम हो गए थे.
If only we could do that with trust meetings. Please, we need you in this meeting, but you have to be an arahat.
तो ऐसा कहा जाना चाहिए कि आप हमें मीटिंग में जरूरत है लेकिन आप अरहत होना जरूरी है.
Okay, I will become an arahat tonight.
तो आज रात में अरहत हो जाता हूँ.
Anyway, that's just a joke.
तो ये केवल विनोद है.
So yes, you can say that all our movements come under these four headings.
तो हम देखते हैं कि ये चार जो ये बातें हैं इसमें ये सारी बातें आती हैं.
So Kayanupassana begins with knowing what posture you're in.
तो कायानुपस्थना हमें ये देखते हैं कि अभी हम किस आसन में हैं.
So right now, well, we're all sitting.
अभी इस वक्त हम सभी बैठे हुए हैं.
But do we know we're sitting?
क्या हम जानते हैं कि हम बैठे हैं?
Well, when you pay attention, yes, you know you're sitting.
जब हम अपने तरफ सचेत हो जाते हैं और देखते हैं कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ.
But very easily you lose awareness of your posture.
लेकिन यह बहुत आसान है कि हम अपने आसन के प्रति अजागृत हो जाएं.
You see sometimes the bad posture that people take.
कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बहुत ही गलत आसन में बैठते हैं.
Or you just get lost in your mind.
जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है, बाहर चले जाता है.
Or you're watching a film.
हम पिक्चर देखते हैं.
And you're so absorbed in the film, you don't know your body is here.
तो जब हम इन्हें पूरी तरह उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा शरीर किस अवस्था में है.
So the first thing we need to do is just quite simply to know where the body, what posture the body is in.
तो पहली बात यह है कि हमने ये देखना चाहिए कि अभी मेरी शरीर की स्थिति कैसी है, किस आसन में हूं मैं.
And according to the Buddha, we should maintain this awareness all the time.
और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि यह जो स्थिति है यह हमने हमेशा के लिए रखनी चाहिए.
And that's the first practice that we need to be engaging in.
तो यह बहुत यानी पहली बात है जिसके साथ हमने जुड़े रहना चाहिए.
That's the point of the stop. Sorry.
तो
stop message.
इसीलिए यह जो रुकी है, यह जो संदेश है इसलिए है.
I handed the gadi to Bodhisattva this morning.
आज यह जो बात है इन्होंने बोधिसेन जी की तरफ हस्तांतरित की है.
Did you say stop?
Because of silence.
Oh no, this you're allowed to say stop.
तो यानी आप बोधिसेन जी अभी रुकिए stop.
He said stop silently, but nobody heard him.
उन्होंने मौन में रुकिए कहा लेकिन किसी ने सुना नहीं उसे.
So yes, Bodhisen, when I'm not around, Bodhisen will say stop.
जब मैं वहाँ आपके इर्द गिर्द नहीं रहूंगा उस समय बोधिसेन आपको रुकिए ऐसा कहेंगे.
And that doesn't count as Bodhisen speaking.
और ऐसा मत देखिए कि ये बोधिसेन कह रहे हैं.
So yes, when that message stop comes, you become aware of your posture.
जब यह रुकिए ऐसा कहा जाता है तो हम अपने शरीर के प्रति सजग होना है.
But try to keep that awareness all the time.
लेकिन यह जो जागृति है इसे हमें हमेशा के लिए रखना है.
Every moment of your day, try to be aware of what posture you're in.
हमारे दिन में जो समय हम बिता रहे हैं तो कोशिश करना है कि अब मैं किस स्थिति में हूँ, कैसे मेरी शारीरिक स्थिति कैसी है.
Try to be aware of what you're doing.
हम क्या कर रहे हैं इसके प्रति सजग होने का प्रयास कीजिए.
So for instance, a lot of us spend a lot of time fiddling.
Fiddling. हाँ, यानी कुछ यानी अजीब सी हरकतें करने में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है.
I can see it when I'm sitting here.
मैं देखता हूँ जब मैं यहाँ बैठे हुए रहता हूँ तो.
I have to be very careful not to fiddle.
मैं बहुत ही सजग रहता हूँ कि इस तरह से यानी कुछ अजीब सी हरकतें ना हो.
Because if I start fiddling, you'll all watch me.
जब मैं इस तरह की कुछ हरकतें करने लगूंगा तो सब लोग देखते रहेंगे.
But you don't realize I'm watching you.
लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ.
And we spend a lot of time very unconsciously fiddling.
तो बहुत ही यानी अजागृति से या हमें पता नहीं होता है कि हम यानी इस तरह की विचित्र हलचले कर रहे हैं.
And this is a sign that we're not mindful.
और यह एक लक्षण होता है कि हम जागरूक नहीं है.
Our energies are scattered.
हमारी जो शक्ति है वो बिखरी हुई है.
So the first thing that we need to be doing on this retreat is just being aware of how our body is right now.
तो ये शिविर की पहली जो बात है हमने ये देखना है कि अभी इस वक्त मेरा शरीर कैसे है.
Now you might think, well, that's easy.
तो हमें लगेगा ये तो आसान बात है.
But you're trying to maintain that awareness every moment.
लेकिन ये हमें हर पल करना है.
Even when you lie down to sleep, you maintain that awareness.
जब हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए रहेंगे तभी भी हमें इस जागृति का सराव करना है.
Of course, when you're deeply asleep, you lose that.
जब हम गहरी नींद में चले जाएंगे तो ये जो जागृति है चले जाना स्वाभाविक है.
And when you wake up, will you come back to it straight away?
जब हम जाग जाते हैं तो फिर से हमने इसके साथ होना है.
So the whole building, as it were, of mindfulness is based on just this awareness of your posture.
तो यह जो जागृति की जो पूरी पूरा जो इमला है, पूरी जो बिल्डिंग है, यह हम हमारे आसन के ऊपर निर्धारित है, निर्भर है.
And it will make a big difference to your experience.
तो हमारे जो अनुभव है इसमें बहुत ही बड़ा अंतर लाएगी ये बात.
As you become more and more aware of your posture will become more graceful and more flowing.
जब हम अपने शरीर के प्रति यानी अपने आसन के प्रति जब सजग हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ तो भी गति आ गई है, कुछ अच्छा हो रहा है.
So this is the first step.
यह पहला चरण है.
But the text goes on with what you could say is a refrain. Like, you know, you get a song and there's a repeated.
मतलब यानी कोई बात अगर हमें स्मरण करना है, एक ही चीज अगर बार बार दोहराई जाती है.
I can't think of any Hindi songs that have this. Subhadra, you know them all. But do you know a song that has, and can you think of an example? So you have a verse and then you have two or three lines that are repeated after every verse. Like a chorus, yeah. ठीक है?
ध्रुवपद पण आहे, ध्रुवपद पण असतं.
So all the way through this text, you've got a chorus.
तो यानी ये पूरे सूत्र में इस बात को हम देखेंगे.
After every exercise, you get this chorus.
हर सराव के बाद इस कोरस को हम देखेंगे.
And the chorus says, in this way, he remains focused internally on the body and externally on the body.
यानी हर इस पद्धति के बाद हम देखेंगे कि हमारे अंदर भी इसे देखना है और बाहर भी इसे देखना है.
Or on both.
और दोनों तरीके से देखना है.
And he remains closely observing the rising and falling of the body.
तो ये जो शरीर के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है और जो विनाश हो रहा है उसको यानी करीबी से देखना है.
Or and he remains mindful just enough for the sake of awareness.
तो यानी जो जागृति है उसे बनाए रखना है.
And his mindfulness is sustained without any clinging.
यानी बिना यहाँ वहाँ जाते हुए अपने अपनी जो जागृति है उसके साथ बने रहना.
So this comes up again and again all through the four satipatthana.
तो यह जो चार सतिपट्ठान है इनके साथ ये जो समूह है ये बार बार आएगा.
So we need to be understand this and then we can apply it every time.
तो इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे ताकि आगे हम इसका आचरण करने के लिए हमें आसानी हो.
So there are four elements.
तो यह चार अंग है.
First of all, there's mindfulness internally and externally and both.
पहली बात है जागृति अंदर बाहर और दोनों तरीके से.
So in this case, you're aware of your posture.
तो पहली बात है कि अपने स्वयं के शरीर के प्रति आसन के प्रति जागरूक होना.
You're aware of the postures of people around you.
हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके शारीरिक स्थिति के बारे में जागरूक होना.
Sometimes you focus on your own posture.
कुछ बार हम अपने स्वयं के आसन के प्रति जागरूक हो जाते हैं.
Sometimes you focus on the postures of others.
कभी हम बाहर यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पोस्चर के प्रति जागरूक हो जाते हैं.
Sometimes you focus on both.
कभी कभी हम दोनों के भी आसनों की तरफ देखते रहते हैं.
When you're communicating, well, you need to be aware of both your postures.
जब हम संपर्क करते हैं तो हम दोनों के भी जो शारीरिक स्थिति है उसके प्रति जागरूक होते हैं.
When you're doing the communication exercises, you're aware of your posture, but you're aware of the person in front of you.
जब हम संपर्क सराव करते हैं तो हम अपने स्वयं के शरीर के प्रति सचेत होते हैं और हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है उनके शरीर के प्रति भी सचेत होते हैं.
At this stage, that's all. You're just aware of their posture.
या इस स्थिति में सिर्फ हम अपने शरीर की स्थिति के प्रति सजग होते हैं.
But you know from the communication exercises that the posture tells you about the person's mind.
तो जब हम संपर्क का सराव में बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आसन हमें बताता है कि इन्हें सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है.
Somebody who's sitting like this is probably depressed.
अगर कोई इस तरह बैठा है तो हम सोचते हैं कि ये शायद निराश है.
Somebody who's sitting like this is either quite sort of stirred up and angry or very excited.
अगर कोई इस तरह बैठा है तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत यानी शायद गुस्सा हुए हैं या उत्तेजित हो गए हैं.
So the posture of the body tells you a lot about the mind.
तो हमारी शरीर की जो स्थिति है जो हमारा आसन है ये हमारी मन की स्थिति को दर्शाता है.
And as we go on to the other satipatthana, we can see the way in which the observation of the body is a key to the observation of people's minds.
तो यह सतिपट्ठान की जैसे जैसे हम अगले चरणों की ओर बढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि इंसान का जो शरीर शारीरिक स्थिति है यह एक तरह से चाबी है कि उसके मन की स्थिति क्या है.
Now the odd thing is, if you're not aware of your own bodily posture, it's quite difficult to be aware of other people's.
तो यह यानी अगर हम अपने स्वयं के शरीर के प्रति अगर जागरूक नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल है यानी औरों के स्थिति के प्रति जागरूक होना.
And oddly, if you're not aware of other people's bodily postures, it's quite difficult to be aware of your own.
और ये भी विरोधाभास है कि अगर हम लोगों के प्रति जागरूक अगर नहीं होते तो अपने स्वयं के प्रति भी जागरूक नहीं हो सकते.
So you could almost say it doesn't matter where you start.
तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यह जरूरी नहीं कि आपने कहां से शुरुआत की है.
Each implies the other.
हर जो बात है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है.
But yes, we need to be aware not just of our own body, but the bodies of others.
तो सिर्फ यानी अपने स्वयं के शरीर के प्रति ही सजग होना नहीं है तो औरों के प्रति भी हमें सजग होना है.
But the next element of reflection on the posture takes us a little bit deeper.
यह जो दूसरा जो इसका संदर्भ है ये और थोड़ा सा गहराई में जाता है.
Yesterday Shakyamitra asked what deeper meant.
कल शाक्यमित्र ने ये पूछा था कि यानी गहराई का अर्थ क्या होता है.
So here's one way in which we could talk about it.
तो यह एक पद्धति है जिसके बारे में अभी हम कहेंगे.
You're aware of the posture.
हम शरीर की स्थिति के बारे में सचेत होते हैं.
But you're aware of that posture as arising in dependence on conditions and passing away.
तो यह जो हमारी शरीर की स्थिति है यह संस्कारों पर निर्भर यानी जिस तरह के संस्कार आते हैं उसके ऊपर निर्भर है और वो संस्कार चले जाते हैं.
You've got some awareness of the impermanence of that posture.
हम यह देखते हैं कि यानी यह जो अनित्यता है उस आसन को लेकर उसे हम देखते हैं.
You just keep in your mind some reflection on the impermanent nature of all bodily posture.
तो हमारे शरीर के जो भी आसन है इसके बारे में हमें चिंतन करना है कि ये सारे जो है यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर है और अनित्य है.
So there's just a small element of reflection.
एक छोटा सा तत्व है चिंतन के लिए.
So that you can not become, as it were, attached to any particular state of the body.
हमारी शरीर की जो स्थिति है उसके साथ हम कभी आसक्त नहीं होते हैं.
You know, you can be doing your hair and making yourself look really beautiful.
तो हम इस तरह अपने बालों को बनाते हैं और देखते हैं कि हाँ सचमुच मैं कितना सुंदर हूँ.
Well, some of you can, I can't.
ये सब में से कुछ लोग हैं मैं नहीं.
Shivadra is having difficulty too. But you know, you look in the mirror and think, oh, I look so young and handsome.
तो हम इस तरह आईने में अपने बालों को सवार देना देखते कि हाँ अभी भी मैं कितना सुंदर और जवान हूँ.
But as soon as you go outside, the wind blows and your hair goes all over the place.
और हम देखते कि कुछ देर बाद हवा आती है और सारे बाल तितर बितर हो जाते हैं.
And sooner or later, the hair is going to start falling out.
और हम देखते कि बाल इस तरह झड़ने लगे.
So you're aware that the body you're dealing with is impermanent.
जिस शरीर के साथ हम अपने आप को देख रहे हैं वो अनित्य है.
This becomes much, much stronger as these reflections go on.
यानी इस चिंतन को हम देखते जाएंगे तो यह बात और मजबूती से सामने आएगी.
And then fourthly, you're aware just enough for knowledge and continuing mindfulness.
तो
you're aware just enough to know what's happening and to be continually aware.
हाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके प्रति हम सजग हो गए हैं और इसका जो सातत्य है इसे भी देखते हैं.
In other words, you don't become sort of caught up in the bodily posture.
यानी एक अर्थ से हम देखेंगे कि जो हमारा शरीर की जो स्थिति है उसे हम पकड़ के नहीं रखते हैं या यस पकड़ के नहीं रखते हैं.
You know, maybe looking at yourself in a mirror thinking, what a wonderful pose.
तो इस तरह आईने के सामने खड़े होकर ऐसा देख रहे थे कि क्या सुंदर पोज है ये.
Sometimes you see young girls doing this, probably young boys too, but they probably do it with karate or something like that.
तो विशेषता यह बहुत युवा लड़कियां होती है और युवा लड़के भी कभी कभी लेकिन उनको जरा जोर कर बातें करने में मजा.
You know, young boy, you can see he's got all his tattoos and he's got his big muscles.
तो युवा बच्चे जो होते हैं वो विशेषता यानी अपने जो टैटूज निकालते हैं या फिर जो मसल्स होते हैं उसको देखते हैं. आई लेके सामने.
And well, so you're aware of your posture.
यानी हम अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं.
But there's attachment.
लेकिन वहाँ आसक्ति है.
Not always, of course.
हमेशा ऐसा नहीं होता है.
You're aware of your posture, but there's attachment.
हम अपने शरीर के प्रति सचेत तो होते हैं लेकिन यह आसक्ति की है. आसक्ति है.
So in the case of the Satipatthanas, you're aware just enough to know what the posture is and to be continuously mindful of it.
तो हम यानी सतिपट्ठान में ये देखते हैं कि हमारे शरीर के प्रति इसलिए सचेत होना है कि यानी ये किस स्थिति में है और ये इसमें किस तरह का सातत्य कैसे आगे चलता है.
And the fourth characteristic is that your mindfulness is not dependent on anything.
और इसका चौथा जो स्वभाव है कि हमारी जो जागृति है वो
it's not dependent on anything.
किसी भी बात पर हमारी जागृति यानी निर्भर नहीं है.
So for instance, you can think of a thief. You know, a thief is moving very, very quietly. Because he mustn't wake up the people he's stealing from. And as he moves each footstep, he's very, very aware of his foot.
So there's
a lot of mindfulness.
But
it's dependent on his greed.
तो यह उसका जो लोभ है उसकी जो आसक्ति है उसके ऊपर वो आधारित है.
Well, sometimes example is given of a cat watching a mouse hole.
कभी-कभी हम मैंने ये बिल्ली जो है अभी जो चूहे को पकड़ने की तैयारी में है.
You know, there's a hole in the mouse inside.
और हम देखते हैं कि वहाँ एक होल है उसके अंदर चूहा है.
The cat just sits there absolutely awake.
क्या जो है वहाँ पर बिल्कुल इस तरह बैठी रह रही है.
The mouse just has to move a little bit.
ये चूहा जैसे बाहर आता है वो झड़प लेती है.
You didn't do the proper imitation. No translation. So your mindfulness of your bodily posture is not dependent on anything.
यानी हमारी जो शरीर की जागृति है यानी किसी बात पर निर्भर नहीं है.
It's just for the sake of gaining enlightenment.
यानी ये बोधि प्राप्ति के लिए हम इसे जागृति की ओर देख रहे हैं.
It's just for the sake of gaining freedom.
यानी विमुक्ति के लिए हम इसे देख रहे हैं.
So there's no clinging to anything.
कुछ भी पकड़ने के लिए इसे नहीं देख रहे हैं.
So every one of these exercises is to be carried out in these four spirit in the spirit of these four things.
हम जो कुछ भी यानी यहाँ जाने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं तो ये चार बातें वहाँ पर हैं.
And each of them takes us deeper.
और हर एक बात हमें और गहराई की ओर ले जाती है.
So first of all, internally and externally, or both.
पहली बात है कि यानी हमारे अंदर देखना है, बाहर देखना है और दोनों तरफ देखना है.
So we're just aware of posture here and there.
तो हमने अपने जो आसन के प्रति सजग होना है यहाँ और वहाँ.
Sometimes our accent is on here.
कभी-कभी हम सिर्फ अपने स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं.
Sometimes it's on there.
कुछ बार हम सिर्फ बाहर होते हैं.
When we're communicating, it's on both.
जब हम संपर्क करते हैं तो दोनों तरफ होता है.
Then secondly, we're aware that these postures and the body that makes them are impermanent.
दूसरी बात यह है कि ये हमारे जो शरीर की स्थिति है वह अनित्य है.
Then thirdly, we're aware just enough to know what the posture is and to maintain continuous awareness.
तो हम कभी यानी हम ये देखते हैं कि यह जानना है अपने आप को और इस जानने की जो स्थिति को है सातत्य में रखना है.
You know, so you can't when you're in your office, you're just sitting there.
हम देखते हैं कि हम अपने कार्यालय में और सिर्फ बैठे हुए हैं.
And somebody says to you, look, you're not doing any work.
और कोई आपको कहेगा कि देखिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं.
You say, go away, I'm being aware of my posture.
आप कहेंगे यहाँ से चले जाइए मैं अपने आसन के प्रति जागरूक हूँ.
So you're just aware, you're just giving enough energy to it to be aware of what the posture is and to keep it going.
ये जो हमें हमारे शरीर की जो जागृति है उसे जानना है और उसी के साथ जो कुछ भी करेगा ना बाद में तो वो बनाए रखना है.
And fourthly, you're aware without any clinging, without any unskillful motivation.
और तीसरी बात चौथी बात ये जानना है कि बिना किसी बात को पकड़ने के लिए या फिर इस पकड़ने के लिए हम जागरूक नहीं हो रहे कोई गलत हेतु उसके अंदर नहीं है अकुशल बात नहीं है उसमें.
So this is supposed to be the first step.
तो यह पहला चरण है.
And if we could achieve this, we would have achieved a lot.
अगर हमने इस बात को पा लिया तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं.
So during these days, concentrate on developing this kind of body awareness.
तो इस आने वाले दिनों में इस तरह की जागृति को हम विकसित करेंगे.
Be aware of your posture.
हमारे शारीरिक स्थिति के प्रति सचेत हो जाइए.
So we move on to the next exercise.
तो हम दूसरा जो चरण है उसकी ओर चलेंगे.
And this takes that process a bit further.
और यह जो बात है थोड़ा और हमें आगे ले जाती है.
Because what we do now is whatever we're doing, whatever actions we're undertaking, we remain fully comprehending sampajanati.
तो हम जो कुछ भी करते हैं तो उसके उसका उसका अनुभव करते हैं.
So it says when we're going forward or coming back,
हम आगे जाते हैं या पीछे आते हैं,
we know what we're doing.
हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं.
Not just in the sense of being aware of it, but we're aware of its meaning, its significance.
तो सिर्फ जानना नहीं है, तो इसके पीछे का अर्थ क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसे भी जानते हैं.
When looking towards or looking away, we fully understand what we're doing.
तो हम यहाँ देखते हैं या वहाँ देखते हैं, तो हम ये पूरी तरह जानते हैं कि यह क्यों कर रहे हैं, समझ के साथ करते हैं.
When bending or stretching out your limbs, you know what you're doing.
हम यानी अपने हाथों को इस तरह यानी करीब लेते हैं या दूर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या कर रहे हैं.
Then it's of course applied to monks and it's to do with robes.
तो ये अरे भिक्षु को बताया गया है, तो अरे उनके चिवरों के बारे में कहा है.
But you could say for us it's a question of knowing how your clothes are on you.
तो हम हमारे लिए हम देख सकते हैं कि यानी किस तरह के कपड़े हमने पहन रखे हैं.
Being aware that your lungi is properly tied.
हम देखें कि हमारी जो लुंगी है क्या वो यानी पर्याप्त बराबर बांधी हुई है क्या कमर पर.
Being aware that yes, your trousers are not falling down.
यानी हमारे जो trousers हमने पहने हैं वो यानी नीचे गिरेंगे नहीं.
Being aware that your coat is on properly.
यानी हमने जो कोट पहना है वो क्या सही पहना है.
So being aware of how you're wearing your clothes.
तो हमने अपने कपड़े कैसे पहने हैं इसके प्रति सचेत होना है.
Not like a film star aware that you've got your shirt open so all your hair is showing.
तो अरे किसी यानी फिल्म अभिनेता की तरह नहीं कि आपने दो चार बटन खुले रखे हैं और कुछ बाल बाहर से बाहर दिखाई दे रहे हैं.
I think that Shahrukh Khan has a wig on his chest.
शाहरुख खान जो आपने यानी उसकी जो छाती है बहुत ही वीक है.
Not sort of wearing it.
झूठे बाल उसने लगाए यहाँ पर.
So you are not wearing it for vanity, but so that we're conscious of how our clothes are.
तो हमारे यहाँ शरीर ये जो कपड़े हमने पहने हैं ये कैसे हैं, किस लिए हैं इसे.
When we eat,
प्रसन्न. तो यानी ये प्रसाधन के लिए नहीं है, यानी शौक के लिए नहीं है, तो ये हमारी जरूरत है.
So we're aware of when we're eating.
जब हम खाते हैं.
We're aware of drinking.
जब हम पानी पीते हैं.
We know what we're doing when we're chewing.
हम क्या हम जानते हैं कि हम क्या चबा रहे हैं.
We know what we're doing when we're tasting the food.
हम ये जानते हैं कि यानी ये जो अन्न है इसकी स्वाद क्या है.
We're aware when we're going to the toilet.
जब हम शौच के लिए जाते हैं तो भी जानते हैं.
We know what we're doing when we're urinating, when we're defecating.
तो हम शौच के लिए जाते हैं तो जानते हैं कि क्या हो रहा है.
Defecating is a polite word.
चलिए शौच को छोड़ रहे हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं.
So we know what we're doing.
तो हम जानते हैं कि क्या कर रहे हैं.
You know, when you're in the toilet, you think you don't have to be mindful.
यानी हमें लगता है कि जब मैं टॉयलेट में जाता हूँ, शौच में जाता हूँ, तो जरूरी नहीं अभी जागरूक रहना.
But even there, you must be mindful.
वहाँ भी हमने सजग रहना है.
You could go even further.
हम इसे आगे भी जा सकते हैं.
This is of course for monks.
और ये जाहिर है कि ये भिक्षुओं के लिए कहा गया है.
There's something that monks don't do.
और भिक्षु यानी कुछ बातें नहीं करते.
But married people do do.
जो शादीशुदा लोग हैं ऐसी बातें करते हैं.
You need to be mindful when that's happening.
जब हमें जागरूक रहना है जब हम इस तरह की बातें करते हैं.
I'm not joking.
मैं विनोद नहीं कर रहा हूँ.
Everything you need to be mindful.
जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस समय हमने सचेत रहना है.
When you're walking, when you're standing, when you're sitting, when you're lying down.
जब हम चल रहे हैं, जब हम बैठे हैं, जब हम खड़े हैं, या फिर हम सोए हुए.
When you fall asleep, when you wake up.
जब हम सोए हुए हैं और खड़े होते हैं.
When you talk.
जब हम बात करते हैं.
When you remain silent.
जब हम मौन का आचरण करते हैं.
You know what you're doing.
हमें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ.
So this is sampajanya.
यह सांपजन्य है.
This is applied to every action that you make.
हम जो कुछ भी कृति कर रहे हैं इसके साथ रहना है.
So I've done a little bit more research.
इसमें भी मैंने कुछ संशोधन किया है.
Anumadasi asked me yesterday about mindfulness of purpose.
तो आनंदसि जी ने कल मुझे यह सवाल पूछा था कि हेतु के प्रति जागरूक रहना मतलब क्या है.
And I told you the way in which the commentary analyzes samprajanya.
तो सांपजन्य के बारे में जो भी टीकाओं में जो कहा है उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया था.
So one of those I said I wasn't completely clear about.
उनमें से एक जो बात जो मैंने कही थी उसके बारे में मैं उतना स्पष्ट नहीं था.
So I did some research and I've got the accurate picture of what sampajanya consists of according to commentary.
तो मैंने इसके बारे में मैंने कुछ संशोधन किया है, कुछ सोचा है कि ये जो टीका है ये क्या कहना चाहती है इसके बारे में.
So there's four aspects.
वहाँ चार तत्व है.
And it begins with purpose.
और वह हेतु से संबंधित है.
You know why you're doing what you're doing.
हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसके प्रति जानना.
When you're eating, you know you're eating to sustain your body.
तो हम जब खाते हैं तो ये जानते हैं कि यानी शरीर को चलाने के लिए मैं इसे खा रहा हूँ.
You're trying to make your body, give your body the fuel that it needs to remain healthy, so that you can practice the Dhamma.
हम अपने शरीर को एक तरह से यानी ईंधन का पुरवठा कर रहे हैं ताकि वो धम्म आचरण करने के लिए बने रहे, चलते रहे.
So everything you do, you know what you're doing and how it relates to your ultimate purpose.
तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके प्रति जागरूक रहना है कि हमारा उद्देश्य क्या है ये करने के पीछे.
You're able all the time to be sort of conscious of how what you're doing fits into the overall pattern of your life.
तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे जीवन की जो एक तरीका है जीने का उसके प्रति सचेत होते हैं.
It's as if our lives are like a pattern.
तो हमारा जीवन एक तरह से एक साचा है, एक तरह से विशिष्ट तरीके से जाने वाला है.
You know, if you're making what should we say, a carpet.
तो हम जैसे ये कारपेट है.
You've got an idea of what the carpet will look like when you've finished.
जब हम कारपेट को डालते हैं तो वो कैसा दिखता है.
And you're working here, you're making, you do it with knots, don't you? You make, you put the threads in with a knot.
तो वो कुछ जो धागे होते हैं उसकी हम गाट लगा बोलता गाट बांधता समझ में आ गया.
So you're working in this corner.
तो हम इस कोने से शुरुआत करते हैं.
And you're trying to, but that what you're doing here is part of the overall pattern.
तो यहाँ जो हम शुरुआत करते हैं ये जो पूरा जो हमने कारपेट बना रहे हैं उसका एक साचा है एक तरह से बना रहे हैं.
You know, maybe there's a big flower on that carpet.
तो उस कारपेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा फूल बना रहे हैं.
And you're just making one petal.
और हम वहां सिर्फ एक जो है वो साचा बना रहे हैं.
And you know how that petal will fit into the larger pattern.
तो यह जो छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ ये पूरे इसमें कैसे बैठने वाली है.
So everything you do fits into the overall pattern of your life.
तो हर कोई चीज हम वहां इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन की जो एक पद्धति है जो साचा है उसमें उसके लिए करते हैं.
And sampajanya means you know how it fits in.
तो सांपजन्य हमें ये देख रहा है कि ये इसे कैसे उस चीज को वहां कैसे रखना है.
I'm doing this so that I can take a step towards enlightenment.
मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं निर्वाण की ओर जा सकता हूँ, बुद्धि की ओर जा सकता
हूँ. Yes, I'm looking after my body so my body can practice the Dhamma.
तो मैं अपने शरीर की ओर देख रहा हूँ क्योंकि ये जो शरीर है वो तो धम्म का आचरण कर रहा है.
I'm working so that I can gain the money to sustain my body, sustain the body of those that I'm looking after.
तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरे शरीर को मुझे बनाना है और मेरे बाकी के जो लोग हैं उनके लिए भी.
And I'm doing that so that we can serve the Dhamma, serve society.
और मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे धम्म को लोगों को देना है और समाज की सेवा करनी है.
So you feel everything you do fits into this large pattern.
तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये पूरा जो एक बड़ा सा जो एक पैटर्न है उसके लिए चल रहा है.
If you can feel this, it's a tremendous sense of satisfaction.
जब हम इस तरह का अनुभव करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी संतुष्टि हम हमारे अंदर पाते हैं.
If you don't feel this, you feel very sort of fragmented and dissatisfied.
तो जब हम ये नहीं जानते हैं तो एक फ्रेगमेंटेड
ब्रोकन अप
यानी उसके टुकड़े एक तरह से हो जाते हैं और संतुष्ट नहीं होते हैं हम.
यू फील आई एम डूइंग दिस देन आई एम डूइंग दैट देन आई एम डूइंग दैट
अभी मैं ये कर रहा हूँ अभी वो कर रहा हूँ और फिर वो करूंगा.
बट इट डजंट रियली ऐड अप.
लेकिन उसमें उसको कोई मायने नहीं है.
Everything you do should be like beads on a mala.
हाँ ये अरे ये जो माला होती है उसके यानी मणि की तरह ही है.
So that each one is there as you turn the mala.
तो हर एक वहाँ पर है जिसको हम मैंने उसका चिंतन करते समय.
So that's what sampajanya in relation to purpose means.
तो सांप्रजन्य का अर्थ ये होता है ना हेतु की तरफ जाना ही अर्थ.
You're aware of what they're for, where they're going.
हम ये जागरूक होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं.
So then there's a sampajanya of suitability. Suitability. Appropriateness.
Suitability like a Hindi shabd. Yogyata ki artha se sampajanya.
So that what you're doing is the best way to achieve what your objective is.
Yani hum achi tarah yani hamara uddesh kya hai achi tarah se hum क्या कर सकते हैं उसे पाने के लिए.
This is the one I couldn't remember properly yesterday.
तो ये बात है जो मुझे कल याद नहीं आ रही थी ढंग से.
So it's not enough to have a good purpose. You need to be sure that what you're doing is good for that purpose.
अरे केवल हेतु सामने होना पर्याप्त नहीं है, तो हम उसके लिए उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं ये भी जरूरी है.
Let's give an example with food.
खाने का उदाहरण लीजिए.
Yes, you're eating to sustain your body so you can practice the Dhamma.
हम उसे इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर सुदृढ़ रहे और ताकि हम धम्म का आचरण कर सकें.
But most of what we eat is actually quite unhealthy.
लेकिन बहुत सारी बार हम ऐसा खाते हैं कि जिससे हमारा जो आरोग्य है वो बिगड़ जाता है.
There's too much oil, too much sugar, too much fat.
बहुत सारा तेल होता है, बहुत सारी शक्कर होती है और बहुत सारे फैट्स होते हैं.
So we get diabetes, we get blood pressure and so on.
तो ये सब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है.
This is true.
ये सत्य है.
There's so much of this in India, much more than most other countries.
यानी भारत में और बहुत सारे देशों में इस तरह की बातें होती है.
It's because we're eating the wrong kind of food.
और ये इसलिए होता है कि हम गलत प्रकार का खाना खाते हैं.
And I think our retreat centers need to make sure we have the right kind of food on retreat.
तो हमारे शिविर केंद्र में इस बात की निश्चिति करनी चाहिए कि हम सही तरह का खाना दे सके, खा सके.
We need to have the right kind of food at home.
हमारे आरोग्य के लिए सही खाना जरूरी है.
But the food we have should be healthy for us.
ऐसा खाना हमने खाना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है वह आरोग्यदायी रहे.
That doesn't mean it should be tasteless.
इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्या बोलते स्वाद रहित है.
It should be tasty as well as healthy.
वो स्वादिष्ट भी होना चाहिए और आरोग्यदायी भी होना चाहिए.
If it's tasty, it's easier to eat.
अगर वो स्वादिष्ट होगा तो वो खाने लायक होगा.
So do you see what you mean? It should be the right food to be healthy.
तो सही खाना होना चाहिए हमारे आरोग्य के लिए.
So we need to think about the things that we do.
तो हम जो कुछ भी बातें करते हैं उसके बारे में हमने सोचना चाहिए.
Yes, we've got a good objective.
हाँ, हमारे सामने एक अच्छा उद्देश्य है.
But have we got the right way of getting that objective?
तो उस उद्देश्य की ओर जाने के लिए क्या हम सही बातें कर रहे हैं क्या?
You know, so you might find somebody's building a pile of rocks. A pile of rocks, a heap of rocks. Putting the heap of rocks together.
कोई बिल्डिंग बना रहा है और उसके ऊपर पत्थरों को रख रहा है.
And you say to him, well, what are you doing?
और हम देखेंगे यार ये क्या कर रहा है.
He says, well, I'm trying to get to nirvana.
तो वो कहेगा कि मैं निर्वाण के लिए सब कुछ कर रहा हूँ.
So you have to say to him, well, it's very, very good that you're going to nirvana. Want to go to nirvana?
तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप निर्वाण की ओर जाना चाहते हैं.
But you won't get there by putting rocks on top of each other.
तो ये इससे प्राप्त नहीं होगा कि एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये होगा नहीं.
You need to go there by the right way.
आप सही दिशा से जाना चाहिए.
Then there's sampajanya in relation to what's called the pasture, gochara.
जो sampajanya है वो posture से या गोचर से कैसे?
Pasture, not posture. Gau kshetra.
मुझे गैया जहाँ चराते हैं ना उसके गोचर.
So it's the place where you are feeding.
वो जगह है जहाँ पर हम क्या बोलते हैं खाने के लिए चीजें होती है वहाँ पर.
What it actually means is the specific practice that you're undertaking.
यानी इसका अर्थ ये होता है कि अरे वो एक ऐसी बात है जहाँ जिसे हम ले रहे हैं.
So you're doing the mindfulness of breathing.
तो जैसे हम सांसों के बारे में देख रहे हैं.
You know what you're doing.
हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं.
You know why you're doing it.
हम ये जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं.
You know how to do it.
हमें जानते हैं कि कैसे करना है.
So you've got the knowledge to make what you're doing into a practice that develops your mind.
हमें जानते हैं कि यानी ये हम क्या कर रहे हैं हमारे मन को विकसित करने के लिए.
And then finally there's what's called sampajanya of amoha. Amoha, non-delusion, non-ignorance.
और जो अविद्या के अधिकार प्रज्ञा के लिए संपजन्य.
So it's put here in negative terms, non-ignorance. Amoha.
अविद्या नहीं है इस अर्थ से.
But of course what it means is wisdom, vidya or prajna.
तो इसका अर्थ यही होता है कि विद्या या प्रज्ञा.
So you're aware of the real nature of things.
तो हम इसके प्रति यानी जो वस्तुओं का जो जो सत्यता है इसका सही अर्थ हम जानते हैं.
You're aware of anicca, anatta and dukkha.
हम ये देखते हैं कि यानी अनित्य अनात्मा और दुख को जानते हैं.
You're aware of the ultimate goal that you have.
हम यानी हमें क्या पाना है इसके बारे में भी हम जानते हैं.
So whatever you do, you're aware of what you're doing and the in these four ways.
हम जो कुछ भी करते हैं हम सजग होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं इस अर्थ से.
Your awareness is intelligent.
हमारी जो जागृति है उसमें हमारी जो बौद्धिकता है वो भी समाई है.
You know the purpose for which you're doing it.
हम इस उद्देश्य को जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं.
You know that it's a suitable way of achieving that purpose.
हमें जो उपयुक्त मार्ग है उसे पाने के लिए उसे भी जानते हैं.
You know how it works as a spiritual practice.
यानी एक आध्यात्मिक सराव करके ये कैसे काम करेगा ये भी हम जानते हैं.
And you're beginning to bring into it more and more of a reflection on the ultimate nature of things.
यानी ये जो अस्तित्व की जो सत्यता है इसको जानने के लिए ये सारी चीजों को हम जानते हैं.
So everything you do in this way.
जो कुछ भी हम करते हैं इस दिशा में करते हैं.
You try to be aware in a very full way of what you're doing.
हम जो कुछ भी करते हैं पूरी तरह से करते हैं कि क्यों कर रहे हैं.
You try to be aware in a very intelligent way.
हम यानी अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ इसे करते हैं.
And this we need to be practicing here now on this retreat.
और यही हम यहाँ इस शिविर में कर रहे हैं.
Everything you do, try to be aware of why you're doing it, where it's going.
हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये देखना है कि क्यों कर रहे हैं और ये कहाँ ले जाएगा.
Try to be aware of whether it's the best means to that.
यानी उसका जो सही अर्थ क्या होता है इसके देखना है.
Try to be aware of how to make it into a practice.
सही मार्ग को देखना है.
Try to be aware of how to make it into a practice.
इसको अपने आचरण में कैसे लाना है.
And try to be aware of the underlying nature of reality.
यानी अस्तित्व की जो जो सत्यता है उसको जानते हुए ये करना है.
Of course you have to gradually develop this kind of intelligence.
हम यानी जाहिर है कि यानी आहिस्ता आहिस्ता हम ये जो बौद्धिकता है इसकी जो उसे 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 हम पालेंगे.
The first exercise we looked at this morning, you're just being aware of what is going on right now.
यानी पहले हमने देखा था कि पहला चरण जो है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है इसके प्रति सचेत होना.
The second exercise, you're beginning to apply much more intelligence, much more penetration to what you're doing.
तो दूसरी बात हमने देखी कि जो चीजों की गहराई में जाना है.
So slow everything down.
तो सभी कुछ हमें अंदर ले जाता है.
And try to be aware in these ways.
और कोशिश कीजिए इस तरह जागरूक होने की.
Try to be intelligent in these ways.
कोशिश कीजिए इस तरह अपनी बुद्धि का उपयोग करने की.
And you'll find that your body is your best friend.
और हमारा जो शरीर है ये हमारा सही दोस्त है.
You'll find it's a source of great joy.
ये देखिए कि यह ऊर्जा का यह स्रोत है.
And you'll be laying down the foundation of your whole spiritual life.
हाँ ना हम हमारी जो पूरी ये जो इमला बनाने वाले इसकी यह नींव है.
So this is the main practice for the rest of this retreat.
ये हमारी यानी मुख्य ये हमारा आधार है तेरे शिविर के बाकी की चीजों के लिए.
Be aware of your body and the body of those around you in these ways.
तो जागरूक रहिए अपने शरीर के बारे में और हमारी ये भी क्या हो रहा है उसके बारे में.
And we'll find more and more satisfaction and happiness with us on the retreat.
तो हम बहुत सुख और संतुष्टि पाएंगे ये करते हुए अपने शिविर में.